नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण 16 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश के 55 जिलों में लागू हो गया है। सरकार ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। कीमती धातु के शुद्धता के प्रमाण के तौर पर हॉलमार्किंग 16 जून 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू थी। उसके बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया। वर्तमान में देश के 343 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया जा चुका है। हॉलमार्किंग के पहले चरण की शुरुआत 23 जून 2021 को हुई थी, जिसमें 256 जिले शामिल थे। दूसरा चरण 4 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था, जिसमें 32 अन्य जिलों को शामिल किया गया था। अब इसका तीसरा चरण शुरू हो गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के तीसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए 8 सितंबर को आदेश अधिसूचित कर दिया गया। ओडिशा में तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण को अनिवार्य कर दिया गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा लिया गया। उन्होंने कहा कि बसों, टैक्सियों, माल वाहनों और एम्बुलेंस समेत सभी श्रेणियों के नए वाणिज्यिक वाहनों पर 1 अक्टूबर से VLT उपकरण और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि पुराने वाहनों में ये उपकरण लगाने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। उन्होंने कहा कि अगर नए वाहनों में VLT उपकरण नहीं होंगे तो उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा। समय सीमा के अंदर ये उपकरण नहीं लगाने वाले पुराने वाहनों के मालिक वाहन साइट पर 1 जनवरी से कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। STA ने VLT ऐप के विकास, प्रबंधन और परिचालन के लिए पिछले साल अक्टूबर में BSNL के साथ एक समझौता किया था। तृतीय पक्ष प्रबंधन मंच सर्टा ने फिन कैपिटल और वर्टेक्स वेंचर्स SEAI की अगुवाई में 3.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि वित्त पोषण के इस दौर में ट्रू एरो पार्टनर्स और मौजूदा निवेशकों 0.72 वेंचर्स, BDMI, एग्ले वेंचर्स, मेंटिस VC और गोट कैपिटल ने भी भाग लिया। सर्टा अपने कारोबार को मजबूत करने और यूरोपीय संघ जैसे नए बाजारों तक विस्तार करने के लिए इस राशि का इस्तेमाल करेगी। कंपनी तीसरे पक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए उन्नत जनरेटिव AI के इस्तेमाल में अग्रणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उदय कोटक के इस्तीफे के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में दीपक गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। कोटक महिंद्रा बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि RBI ने 7 सितंबर 2023 को अपने पत्र के माध्यम से गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी। उनकी नियुक्ति 2 सितंबर 2023 से 2 महीने के लिए प्रभावी है। उम्मीद है कि RBI इस दौरान बैंक के पूर्णकालिक MD की नियुक्ति को मंजूरी दे देगा। उदय कोटक ने अपने कार्यकाल से लगभग 4 महीने पहले 1 सितंबर को बैंक के MD और CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत को 2047 तक विकसित देश बनने के लिए अगले 20 वर्षों तक 8-9% की दर से बढ़ने की जरूरत है। डेलॉयट दक्षिण एशिया के CEO रोमल शेट्टी ने ये बात कही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। शेट्टी ने कहा कि भारत को Chin+1 रणनीति से फायदा मिल सकता है, क्योंकि कोई दूसरा देश इस तरह के परिचालन के पैमाने और आकार की पेशकश नहीं कर सकता जैसा यहां उपलब्ध है। अंतरिक्ष क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पहले ही 200 स्टार्टअप हैं और यहां 2040 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आ सकता है। भारतीय कंपनी नेटको फार्मा ने शुक्रवार को कहा कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक जेनेरिक दवा के संबंध में उसे अमेरिका में कुछ दूसरी दवा विनिर्माताओं के साथ एक प्रतिस्पर्धा रोधी मुकदमे में प्रतिवादी बनाया गया है। हैदराबाद स्थित दवा कंपनी को अमेरिका में लुसियाना हेल्थ सर्विस एंड इंटीमिटिटी कंपनी DBA ब्लू क्रॉस और ब्लू शील्ड ऑफ लुसियाना तथा HMO लुसियाना इंक ने प्रतिवादी नामित किया है। इस मामले में सेलजीन कॉरपोरेशन, ब्रेकनेरिज फार्मास्यूटिकल इंक भी प्रतिवादी बनाए गए हैं। मामला कैंसर रोधी दवा पोमेलिडोमाइड से जुड़ा है। नेटको फार्मा ने संदर्भ में एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये मामला पूरी तरह बेबुनियाद है। ब्रेकनरिज अमेरिका में इस जेनेरिक दवा की नई औषधि अनुप्रयोग धारक और वितरण भागीदार है। श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स की संचालक ट्रांस वर्ल्ड होल्डिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि वह जलपोत कंपनी को निजी बना रही है। उसने पुनर्खरीद के लिए सांकेतिक कीमत के तौर पर 338 रुपए प्रति शेयर की पेशकश की है। श्रेयस शिपिंग ने कहा कि उसे 7 सितंबर को BSE और NSE से असूचीबद्ध होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बयान में कहा कि पुनर्खरीद के लिए न्यूनतम कीमत 292 रुपए प्रति शेयर तय की गई। हालांकि मूल कंपनी ने प्रीमियम और सांकेतिक कीमत के तौर पर 338 रुपए प्रति शेयर की पेशकश की है। ट्रांसवर्ल्ड होल्डिंग्स ने अपने भारतीय सहायक कंपनी श्रेयस शिपिंग के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से असूचीबद्ध करने के अपने इरादे की घोषणा 21 मई को की थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।